दोस्तों, कार्यक्रम अमेरिका में मानवाधिकारों की स्थिति में आपका स्वागत है। सैयद मीसम और स्वाति का सलाम स्वीकार कीजिए।
ईरानी कैलेंडर में 27 जून से लेकर 3 जुलाई तक को अमेरिकी मानवाधिकार सप्ताह का नाम दिया गया है। इसका कारण यह है कि अमेरिकी अपराधों, विशेष रूप से ईरानी जनता पर अमेरिकी अत्याचारों को याद रखा जाए।
बड़ी शक्तियां अपने हितों को साधने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल करती रही हैं, ताकि वो हालात को अपने हितों के मुताबिक मोड़ सकें। एक ऐसा हथकंडा जिसका आजकल बड़ी शक्तियां बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रही हैं, आतंकवाद का समर्थन है। दरअसल आतंकवाद का दोहरा इस्तेमाल किया जा रहा है। बड़ी शक्तियां जब अपने हितों के मुताबिक आतंकवाद का इस्तेमाल करती हैं, तो उसे कभी लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए संघर्ष तो कभी कोई दूसरा नाम दे दिया जाता है। वहीं अगर संघर्ष बुनियादी अधिकारों के लिए है, लेकिन वो उनके हितों के अनुसार नहीं है, तो उस पर आतंकवाद का लेबल चिपका दिया जाता है।
व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति कोई भी रहा हो, उसने मानवाधिकारों के समर्थन और आतंकवाद के खिलाफ का नारा बुलंद किया है, लेकिन जब जमीनी हकीकत पर नजर डाली जाती है तो पता चलता है कि आतंकवादी गुटों का समर्थन करके व्हाइट हाउस अपने हितों को साध रहा है और मानवाधिकारों की बलि भी खूब धूमधाम से चढ़ाई जा रही है। इसमें भी कोई शक नहीं कि अमेरिकी सरकारों और ईरान की इस्लामी क्रांति के विरोधी आतंकवादियों के बीच एक संबंध रहा है। इस बारे में कई दस्तावेज मौजूद हैं और उनमें से एक ये है कि अमेरिकी अधिकारी उनके सम्मेलनों में भाग लेते रहे हैं।
न्यूज़वीक ने अक्टूबर 2019 के अपने संस्करण में लिखा था, अमेरिका के राष्ट्रीय सलाहकार जॉन बोल्टन के अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की वकील रूडी जोलियानी और कई अन्य अधिकारियों ने इस्लामी क्रांति के विरोधी आतंकवादियों के सम्मेलन में भाग लिया और उनका समर्थन करने के बदले उनसे पैसा वसूल किया। इराकी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के पूर्व सदस्य अस्कंदर वतूत ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वर्षों से फ्रांसीसी और अमेरिकी आतंकवादी गुट मुजाहिदीन खल्क का इस्तेमाल ईरान को चोट पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। ये ऐसा आतंकवादी गुट है कि जिसने दसियों आतंकवादी कार्रवाइयों को अंजाम दिया है और दाइश के साथ इसके गहरे संबंध हैं।
मुजाहिदीन खल्क सिर्फ एक ऐसा आतंकवादी गुट नहीं है जिसका अमेरिका समर्थन करता रहा हो। अमेरिका कई आतंकवादी गुटों का समर्थन करता रहा है और कई का उसने गठन भी किया है। इस दावे के लिए कई पुख्ता सबूत भी मौजूद हैं। रीगन के शासनकाल में CIA के प्रमुख विलियम एडम्स ने अपनी यादों की किताब में लिखा है, अमेरिका अपने हितों को साधने के लिए आतंकवाद का इस्तेमाल करता था। 80 के दशक में अमेरिका ने उसामा बिन लादेन और अलकायदा का इस्तेमाल किया ताकि इस्लामी जगत में अपने हितों को साध सके। हालांकि औपचारिक रूप से वॉशिंगटन कट्टरवाद का विरोध करता था, लेकिन हथियार के तौर पर उसका इस्तेमाल भी करता था।
ट्रंप खुलकर डेमोक्रेट्स पर दाइश के गठन का आरोप लगाते थे। उनके इस बयान की वीडियो मौजूद है जिसमें उन्होंने कहा था, एक बार फिर मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों से आज हम लड़ रहे हैं, 20 साल पहले खुद हमने उनका गठन किया था। हमने उन्हें सऊदी अरब और दूसरे अरब देशों से निकलने की अनुमति दी ताकि वे वहाबी इस्लाम का प्रचार कर सकें। सीरिया में भी हमने यही काम किया, यानी सीरिया और रूस के खिलाफ अलकायदा का इस्तेमाल किया। अफगानिस्तान में हमारी योजना ने लोकतांत्रिक सरकार को उखाड़ फेंका और सीरिया में भी अमेरिका के प्रतिनिधित्व में इस्लामिक स्टेट यही कहानी दोहरा सकता है। 2016 में इंडिपेंडेंट ने जूलियन असांजे के हवाले से ट्रंप के दावे के समर्थन में लिखा था कि क्लिंटन फाउंडेशन और दाइश की वित्तीय सहायता करने वाले एक ही लोग हैं। Thank you.
ऑस्ट्रेलियाई लेखक टीम एंडरसन ने अपनी किताब सीरिया की गंदी लड़ाई, व्यवस्था, परिवर्तन और प्रतिरोध में लिखा, अमेरिका हमेशा आतंकवाद के खिलाफ लड़ने का दावा करता था, लेकिन खुफिया तौर पर वह आतंकवादियों का प्रशिक्षण करता रहा और उन्हें हथियारों की आपूर्ति करता रहा। इस किताब के मुताबिक दाइश के कुछ सरगना ग्वांटानामो बे जेल में रह चुके थे, जैसे कि अब्दुल रहीम मुस्लिम दोस्त। दाइश का पहला सरगना अबू बकर अल बगदादी इराक स्थित अमेरिकी जेल में कैद था। जेल में ही उसका CIA और मोसादा के एजेंटों ने ब्रेन वॉश किया था। 2015 में सिमिर हर्ष ने लिखा था कि ओबामा शासन और CIA दाइश को हथियारों की आपूर्ति कर रहे हैं। अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने स्वीकार किया था कि अमेरिका ने इसलिए दाइश को हथियार दिए क्योंकि फ्री सीरियन आर्मी में बशार असद की आर्मी का मुकाबला करने की शक्ति नहीं थी।
अमेरिकी विसेल ब्लोअर एडवर्ड स्नोडन ने पर्दाफाश करते हुए कहा था कि CIA ब्रिटेन और ज़ायनी शासन ने दाइश का गठन करने में अहम भूमिका निभाई थी। यूनेस्को ने भी अपनी एक रिपोर्ट में लिखा था, इराक के लिए अमेरिका के $1 अरब के मूल्य की हथियारों की खेप लापता हो गई है और संभवतः वो दाइश के हाथ लग गई है। इन रहस्योद्घाटनों से स्पष्ट है कि आतंकवाद अमेरिकी विदेश नीति का एक प्रमुख हथियार है। अमेरिका द्वारा मानवाधिकारों के समर्थन का नारा दिखावटी है।
खुद अमेरिका में जब मानवाधिकारों की बात आती है तो कहा जाता है कि यह देश अपनी विदेशी नीति में आक्रामकता जरूर रखता है, लेकिन आंतरिक रूप से वह अपने सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार करता है और सभी के अधिकारों का भरपूर ख्याल रखता है। अमेरिकी राष्ट्रपति लोगों का वास्तविक प्रतिनिधि होता है और वह जो भी फैसला लेता है वह आम लोगों के हितों को देख कर लेता है। मीडिया अमेरिका की कुछ इस तरह की तस्वीर पेश करती है, जबकि सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये है कि अमेरिका में अमेरिकी नागरिक ही मानवाधिकारों के नाम पर सबसे पहले बलि चढ़ते हैं।
इस संदर्भ में सबसे पहला बिंदु यह है कि अमेरिकी लोकतंत्र बुनियादी तौर पर एक पूंजीवादी लोकतंत्र है। अमरीकी लेखक और शोधकर्ता माइकल पिंजी ने अमरीकी राजनीतिक व्यवस्था को अल्पसंख्यक केंद्रित लोकतंत्र के रूप में वर्णित किया है, जो बहुमत के नाम पर शासन करता है लेकिन अमीर अल्पसंख्यकों के पक्ष में काम करता है। पिंजी का मानना है कि कई सरकारी नीतियां बड़े निवेशकों के लाभ के लिए और आम लोगों के नुकसान में हैं। इस व्यवस्था में अमीर अमीर होता चला जाता है, जिसके पास इतना पैसा होता है कि उसे नहीं पता कि इसका क्या करना है और इसे कैसे खर्च करना है। वहीं गरीबी रेखा के नीचे या उसके आसपास रहने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। उनका मानना है कि अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था दरअसल एक राजशाही व्यवस्था है।
दूसरा बिंदु यह है कि अमेरिका के सामाजिक ढांचे में समानता नहीं पाई जाती है और भेदभाव इस समाज की एक बड़ी प्राचीन समस्या है। अफ्रीकी और एशियाई मूल के नागरिकों के साथ बड़े पैमाने पर भेदभाव किया जाता है, यहाँ तक कि नौकरियों में भी कालों के साथ भेदभाव किया जाता है। अमेरिका में अश्वेतों में बेरोजगारी की दर श्वेतों से दोगुनी है। शिक्षा केंद्रों में भी इस भेदभाव को देखा जा सकता है। 11 सितंबर की घटना के बाद से मुसलमानों के साथ भेदभाव में काफी वृद्धि हो गई है। इस भेदभाव के परिणाम स्वरूप जातिवादी हमलों में वृद्धि हुई है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शासनकाल के दौरान अल्पसंख्यकों के खिलाफ हमलों में अभूतपूर्व वृद्धि देखने को मिली थी। इसके स्पष्ट उदाहरणों में से लैटिन अप्रवासियों पर दबाव में वृद्धि, उन्हें अमेरिका से बाहर निकालने के लिए उठाए गए कदम और कुछ इस्लामी देशों के नागरिकों के प्रवेश पर प्रतिबंध के लिए राष्ट्रपति के तुगलकी फरमान का उल्लेख किया जा सकता है।
अमेरिकी समाज में अश्वेतों को किसी भी अन्य वर्ग की तुलना में सबसे ज्यादा निशाना बनाया जाता है। अमेरिका में अश्वेतों के अधिकारों के हनन के कई मुख्य कारण हैं। सबसे पहला ये कि आज तक अश्वेतों को समाज का हिस्सा नहीं समझा जाता और उन्हें हाशिए पर रखा जाता है। अमेरिका में अश्वेतों की आबादी 13% है, वे अल्पसंख्यक हैं और उन्हें प्रथम श्रेणी का नागरिक नहीं समझा जाता। बराक ओबामा ने अपने राष्ट्रपति काल की समाप्ति के बाद कहा था कि खुद उन्हें अपने शासनकाल के दौरान अमेरिका के राजनीतिक समुदाय की ओर से भेदभाव का सामना करना पड़ा।
अमेरिकी समाज में जिस तरह से मीडिया और अभिव्यक्ति की आज़ादी का ढिंढोरा पीटा जाता है, वास्तव में ऐसा नहीं है। इस देश में राजनेताओं और खुफिया एजेंसियों द्वारा मीडिया और पत्रकारों को निशाना बनाया जाता है। ट्रंप के शासनकाल में यह स्थिति ज्यादा स्पष्ट रूप से सामने आई और मीडिया ने ट्रंप को अभिव्यक्ति की आज़ादी का दुश्मन करार दिया। ट्रंप ने 2020 में श्वेत पुलिसकर्मियों के हाथों अश्वेत जॉर्ज फ्लॉयड की दर्दनाक मौत के बाद होने वाले विरोध प्रदर्शनों को ताकत के बल पर कुचलने का आदेश दिया था। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि मानवाधिकार अमेरिका की विदेशी नीति का एक हथियार है, जिसे अमेरिकी सरकारें अपने हितों के आधार पर इस्तेमाल करती रही है। जहां तक अमेरिकी समाज की आंतरिक स्थिति की बात है, इसका इस्तेमाल पूंजीपतियों के अधिकारों की आपूर्ति और एक छोटे वर्ग के हितों के अनुसार किया जाता है। इस समाज के दूसरे वर्गों जैसे कि अश्वेतों और धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए मानवाधिकारों का कोई अर्थ नहीं है।
तो दोस्तों, कार्यक्रम का समय यहीं समाप्त हुआ। हमें इजाजत दीजिए।